ओम शांति। आज हम सभी ने इतनी एलिवेटेड कहेंगे मुरली सुना। तो हम सभी की कोशिश रहती है कि मुरली को एंजॉय करें और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमारी बुद्धि में रहे। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि मुरली की बहुत सारी पॉइंट्स हम भूल जाते हैं या बाद में याद आता है। तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कैसे मुरली सुने कि जो भी हमें पॉइंट चार पांच पॉइंट्स भी हो अगर तो हमें याद रहे अच्छी तरह से उसको हम समझ सकें। तो ये हमें ध्यान देना है। और मुरली क्यों भूल जाती है, या आज भी आप देखें दुनिया में भी जब हमारे पास कोई वस्तु है, मोबाइल है, आपके चश्मा है, पेन है, डायरी है, कहीं भी भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं ना कई बार, तो क्यों भूलते हैं? क्योंकि जब हम कोई छोटे बच्चे को भी कहते हैं कुछ करने के लिए ना, कोई काम करने के लिए, तो क्या कहते हैं? ध्यान से करना, ध्यान से रखना, ध्यान से जाना। तो क्या अर्थ हुआ इसका? देखते हुए, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई वस्तु है और आप रख रहे हैं उसे, तो रख रहे हैं आप सोचेंगे यहां तो रखते ही ना, हमेशा हम देख रहे हैं इधर ऐसे रख दिया और फिर बाद में उठ के चल दिए तो क्या होगा? फिर मुझे याद नहीं आएगा मैंने कहां रखा, क्योंकि हमने रखा तो जरूर लेकिन देखा नहीं हमने। तो इसीलिए कहते हैं कि आजकल कोई भी कार्य करो या कोई भी वस्तु रखो, कोई भी चीज देखो, तो क्या करो? देखते हुए। भले आप जानते हैं आप अपना चश्मा भी रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, डायरी रख रहे हैं, कैसे है ना, उसके साथ साथ एक बार देखें जरूर और फिर रखें, देखना है। या कोई भी वस्तु आप रख रहे हैं, अलमारी में भी रख रहे हैं, क्या करें? उसको देखते हुए रखें। तो क्या होगा? आप भूल जाएंगे। अगर बाय द वे कभी आप भूल गए ना, तो इतना आपको याद रहेगा है ना कि मैंने ऐसे रखा था, वो याद आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? ध्यान से, है ना, ये देखना ही ध्यान हो गया ना। आप ध्यान से रख रहे हैं है? और आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, यहां टेबल होगा ये से रख रहे हैं, कोई ग्लास की चीज है, क्या होगा? तो भले हम जानते हैं सब कुछ है, लेकिन ध्यान से रखना है ना? तो इसीलिए जब हम मुरली भी सुनते हैं तो इसे क्या करें? बाबा भी कहते हैं ना कई बार कि मुरली केवल रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज जैसे रिपीट कर दिया हमने पॉइंट, लेकिन रिवाइज के साथ क्या करना है? रियलाइज, है ना। तो बाबा ने भी एक बार मुरली में बताया है कि जब भी आप मुरली सुनते हो तो साथ ही साथ उसको अनुभव करते जाओ, जो भी बाबा कह रहे हैं उसे देखते जाओ, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि ये कौन सी फैमिली है? ईश्वरीय फैमिली। तो ईश्वरीय फैमिली को देखेंगे, कहाँ होती है ईश्वरीय फैमिली, कैसी होती है ईश्वरीय फैमिली? तो उसे हमें क्या करना है? एक बार देखना है। जैसे हम कहते हैं ना आत्मा, है ना, जब हम आत्मा कहते हैं तो आत्मा जैसे एक शब्द रह जाता है, चाहे मुरली की एक बात हम सुनते हैं ना तो पॉइंट्स रह जाती है, जस्ट हमने याद कर लिया। लेकिन करना क्या है? उसे देखना है एक बार। जैसे आप सुनते हैं कि आत्मा या भाई भाई, तो भाई भाई या आत्मा कैसे, उसे देखें एक बार, केवल सुन के छोड़ ना दे, एक सेकंड के लिए ही सही आत्मा को देखना है, पॉइंट्स रूप में देखना है। और ईश्वर है, बाबा है, परमात्मा है, तो उसे भी कहां देखना है? परम धाम में एक सेकेंड के लिए ही सही देखना है, जो ही बाबा ने कहा ना, ईश्वरी फैमिली। तो ईश्वर के बिना तो फैमिली नहीं हो सकती ना, ईश्वरी। तो सबसे पहले किसको देखें, तो हमारे सम्मुख दिखाई दे परम धाम। तो जैसे हम यहां स्थूल चीजों को किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं, परम धाम को किससे देखेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र से। तो यहां भी हमें ध्यान देना है, समझ सकते हैं कि जैसे देखिए आप कोई चीज देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका बुद्धि योग नहीं है, बुद्धि कहीं और भी भटक रही है ना, तो देखने से पता चलता है ना कि ये देख तो रहे यहां लेकिन यहां है नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं लोग कि अरे भाई ध्यान से सुनो, समझ जाते हैं ना यहां नहीं है, कहां हो अभी, ऐसे भी पूछेंगे। तो इसीलिए जैसे अगर बुद्धि का सहयोग नहीं है तो आंखों से देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं। तो इसीलिए जैसे बाबा ने कहा कि ये ईश्वरी फैमिली है, तो सबसे पहले परम धाम में बाबा को देखें। और बाबा ने कहा कि इस ईश्वरी फैमिली में आप क्या हो, एक ही संबंध है, क्या आपस में भाई भाई, आपस में एक ही संबंध है, भाई भाई होकर रहना। ये बाबा ने कहा भाई भाई होकर रहना। और करना क्या है, करना क्या है, बाबा कई बार एक्सप्लेन करते हैं, आज इसमें नहीं था लेकिन इसको समझ सकते हैं। करना क्या है, जैसे भाई भाई होकर तो रहना है, तो हम उसी समय जब बाबा ने कहा भाई भाई, तो हम आत्मा आत्मा देखें, स्वयं को भी आत्मा देखें, सामने वाले को भी आत्मा देखें। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने दिनचर्या में तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम ईश्वरी फैमिली के हैं, भाई भाई हैं, तो हर एक को क्या करेंगे, भाई रूप में देखेंगे ना। तो भाई रूप में कैसे देखेंगे, आत्मा रूप में। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा जी, तो अगर ऐसे हम देखेंगे, यदि हम किसी को देखेंगे ना, किसी आत्मा को देखेंगे, तो उस आत्मा के बारे में ही अगर हम उसी को देखने लगते हैं पूरी रीति से, तो भी क्या होगा, अगर हम किसी आत्मा को देख रहे हैं और उसी को देखने भी लगे, बाबा यही स्टॉप नहीं करते हैं। बाबा क्या, जैसे आज श्लोक इसमें नहीं था सार में, लेकिन बहुत बार बाबा कहते हैं कि देखो आप आत्मा को, लेकिन याद किसे करो, भले आत्मा देखो लेकिन उसे याद नहीं करो, आत्मा को देखना है लेकिन याद बाबा को करना है, ये प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तब हम समझेंगे कि हाँ ईश्वरी फैमिली है, हम भाई भाई तो याद है, ईश्वरी फैमिली अर्थात हम आपस में देख रहे हैं कि भाई भाई हैं, लेकिन बाबा को ही मिस कर रहे हैं, तो कहेंगे ईश्वरी फैमिली। तो ईश्वरी फैमिली अर्थात हम भाई भाई, ये स्मृति तो है, हम आत्मा हैं, लेकिन हम बाबा को याद करते रहे। तो इसीलिए बाबा जब आते थे, बाबा की जब पधरामणि होती थी, तो बाबा क्या कहते थे, कई बार कहते थे बाबा कि भले बाबा यहां आए हुए हैं लेकिन आप मुझे कहां याद करो, परम धाम में। ऐसा नहीं कि बाबा आ गए तो यहीं देखते रहे, बाबा को भी देखते होंगे ना, बाबा कैसे देखते हैं, लगता है ना कि बाबा है यहां लेकिन ऊपर से देख रहा है बाबा। तो ये कॉन्शियस हो, तो केवल हम सुने नहीं उसको देखें, जो भी हम सुन रहे हैं उसको देखें बुद्धि से, है ना, उसको अनुभव करें। तो यदि अनुभव करते हैं, देखते हैं बुद्धि से, तो भूलेंगे नहीं। आपको भले तीन ही पॉइंट आपको याद हो मुरली की, दो ही पॉइंट याद हो, उस एक पॉइंट को आप ले लो और पूरा दिन उस पर चिंतन कर, या उस पॉइंट्स को आप दिन में, दिनचर्या में या हर कार्य में इम्प्लीमेंट करो कि कैसे इसको यूज करें इस कार्य में इस, तो इस तरह से हमें देखना है। फिर आप देखो मुरली, आपको अगर रोज आपको नई नई दो दो बातें भी आती हैं तो नया उमंग उत्साह भी होगा और आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये ईश्वरी है ना, ये ईश्वरी फैमिली का लॉ है। ईश्वरी फैमिली का लॉ है क्या? भाई भाई होकर रहना। तो भाई भाई होकर रहेंगे है ना, तो ला हमें बहुत चीजों से बचा लेता है। अगर हम ला को नहीं मानते हैं, ला से नहीं चलते हैं, तो क्या हो जाता है? पनिशमेंट मिलती है। और पनिशमेंट क्यों मिलती है? क्योंकि अगर हम ला तोड़ते हैं तो हम केवल अपना नुकसान नहीं करते है ना। जैसे आप मान लो डाइनिंग में गए, आपने भोजन लिया लेके चल दिए और आप सावधानी नहीं रखते ऐसे, तो मान लीजिए आपका भोजन गिर जाता है आगे, आगे और भी कोई खड़ा है, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी। लेकिन सामने वाले को भी भुगतना पड़ा ना, उसने तो कोई गलती नहीं की ना। तो इसीलिए जब हम लाभ को भूलते हैं, नियम को भूलते हैं, सावधानी को भूलते हैं, तो पनिशमेंट मिलता है। जैसे अभी हुआ है एक दो दिन पहले ही, सऊदी अरब में पंजाब के हैं कोई सरदार है, तो वहां दो बार कोई भी ला चलता है, कोई भी अगर किसी से गलती हो गई तो एक बार सरकार सजा देती है जैसे 7 साल 8 साल 10 साल, दूसरी बार जिसके प्रति गलती हुई है उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तो कई लोग बोलते हैं हाँ इनका सिर कलम कर दो, इनको ये कर दो, इस तरह से तो डबल सजा हो जाती है। सोचिए कि एक इतनी छोटी भूल होती है वहां, तो उसकी सजा मौत की होती है, वो भी एक बार मरते हैं। लेकिन यहां यदि हम नियम को तोड़ते हैं तो क्या होगा? कल्प कल्प है ना, यही सजा हो गई ना। कल्प कल्प जो हमने अपने पद को नीचे ला दिया, उससे हम नीचे आ गए, तो यही बहुत बड़ी सजा हो गई। और इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जैसे ईश्वरी फैमिली का लॉ है भाई भाई होकर रहना, तो इसे प्रैक्टिकल में हमें इक्वल पॉइंट ना हो, ऐसे देखते रहें दिन में। दिन में जितना प्रैक्टिस हो ना, आत्मा देखते रहें सभी को। लेकिन आत्मा देखते हुए भी बाबा ना भूले, बाबा याद रहे, देखे सामने आत्मा को बेशक है ना, लेकिन याद बाबा करते रहे। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल भी क्या है? ब्राह्मण कुल में क्या होता? आज गीत भी था ना, गीत में बहुत अच्छा था ये, कि ये क्या है? छोटा सा परिवार में है ना, माँ बाप और भाई बहन। ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में और तो कुछ नहीं होता ना, भाई बहन। तो अगर ये हमारी स्मृति में रहता है कि हम भाई बहन हैं, तो क्या होता है इससे? तो बाबा ने कहा विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पहला ईश्वरी फैमिली याद है और इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं भाई भाई की, तो ये क्या करता है? प्रभावी है, इफेक्ट डालता है। इससे जैसे पावर हम गेन करते हैं, पावर आती है इससे। इसीलिए कहते हैं ना, जब बीज रूप अवस्था सबसे पावरफुल है, क्यों? क्योंकि जब बिंदु बिंदु से जुड़ता है तो डायरेक्ट पावर लाइट होते जाते हैं। लेकिन जब भाई बहन समझते हैं तो इसमें पावर नहीं आ रही है, लेकिन इसमें क्या होता है? भाई बहन समझ कर चलते हैं तो हम बच जाते हैं, पावर नहीं आ रही है, लेकिन जो हमसे गलती होती ना, वो गलती नहीं होगी, उससे हम बच जाएंगे भाई बहन होकर रहना। तो भाई बहन होकर रहें तो हम बच गए, और जब हम भाई भाई होकर रहते हैं, आत्मा समझते हैं, तो क्या हो जाती है? पावर आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में भी क्या अंतर है? कहते हैं कि पाप अर्थात भारी हो जाते हैं, चलते फिरते भी भारी, जैसे लगेगा कि भारीपन बहुत होगा, हल्के नहीं होंगे। क्यों? पाप भारी कर देता है, और वहीं पर पुण्य क्या करता है? लाइट कर देता है। आप किसी का सहयोग करो, किसी को सुख दो, आप देखिए कैसे होते हैं, कैसे चलेंगे। तो ये निशानी है पाप और पुण्य का, कि यदि कभी भी हम भारी हो जाते हैं तो नोट करें, अवश्य इसमें कुछ है ना। तो इसीलिए यदि हम भाई बहन होकर रहते हैं तो हम इनसे बच जाते हैं, इनके प्रभाव से बच जाते हैं, विकारी दृष्टि से बच जाते हैं। और इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है? वातावरण बनाने की सेवा। और दुनिया में भी क्या कहते हैं? बद ठीक लेकिन बदनाम नहीं। अगर बदनाम हो गया ना कोई, तो बेचारा भले वो ठीक हो, लेकिन देखने वाला कैसा सोचेंगे, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं यदि कोई गलती कर भी रहा है, कोई भूल किया भी है ना, तो उसका 1% भूल है, और हमने अगर 10 को बता दिया ना, तो हमारा 10 गुना पाप हो गया उससे। हमने किया नहीं, लेकिन हमारा पाप कर्म उससे भी 10 गुना हो गया, क्योंकि हमने वातावरण खराब कर दिया ना। तो हमने भी देखा अभी हाल ही में, एक बहुत बड़े डॉक्टर था, बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, 30-35 वर्षों से लगातार 2 बजे उठना, और हर तरह की प्रैक्टिस थी उनकी, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसा उन्होंने संकल्प चलाया ब्राह्मणों का कि हम लोगों को भी लगने लगा कि अब इनको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जब सभी ब्राह्मण किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना, किसी के ब्राह्मण के बारे में सोच के और संकल्प चल जाता है, भारी हो जाते हैं अनेक आत्माएं, तो उस पाप से कोई मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि हमने देह देखा, देह समझा, ये पाप हो गया, भारी हो गए हम, और जो ही हमने ब्राह्मण समझा, भाई बहन समझा, हल्के हो जाएंगे, बच जाएंगे। और भाई भाई समझा, आत्मात्मा, तो एक दूसरे को हम सहयोग भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमें इतना इसका ध्यान देना होगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें प्रैक्टिस करना है किसका? अशरीरी होने का। तो बाबा ने जो कहा अशरीरी होने की प्रैक्टिस, तो कब करेंगे अशरीरी होने की प्रैक्टिस? मुरली के समय कितना देर करेंगे? 1 सेकंड ना। तो मुरली हमें सुनना है, लेकिन पूरे दिन में उसको यूज करना है, बैठ के टाइम निकालना होगा। और शरीर कैसे हो, और शरीर भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं ना, अपने को देखना है। जैसे आप अपने पूरे बॉडी को देख रहे हैं, लाइट की बॉडी है, सिर से लेके पांव तक देख रहे हैं, लाइट ही लाइट। इसमें भी 2 प्रकार से देख सकते हैं, जैसे अंदर हैं हम, मस्तिष्क के मध्य हैं, और वहां से हम देख रहे हैं अपने सिर को, लाइट का है, एक एक अंग को देखते जा रहे हैं, लाइट का है। दूसरा है इस शरीर से परे, थोड़ा ऊपर हो जाते हैं और ऊपर से देख रहे हैं शरीर को, कि लाइट का बॉडी अलग है। तो इससे क्या होंगे? हल्के होते जाएंगे, है ना? तो ये हमें प्रैक्टिस भी करना होगा, केवल सुनने से, केवल पॉइंट रिपीट करने से नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसको दिन में हम बैठकर जो हमने मुरली सुना है उसकी प्रैक्टिस भी करें। जैसे बाबा ने आज देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, कि जैसे बाबा ने कहा कि कोई गुरु नानक का टेम्पल है, जैसे बाबा ने कहा ना, तो उसमें यदि कोई जाता है तो उसे क्या कहेंगे? सिख, ऐसे बाबा ने कहा ना, उन्हें क्या कहेंगे, सिख कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कोई अगर मंदिर में जाता है ना, मंदिर में अगर कोई जाता है ना, और उसकी स्थिति ऐसी नहीं है तो क्या कहेंगे, समझा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें, जैसे मान लो मंदिर है और आपको पता चलता है कि ये बहुत बड़ा चोर है या बहुत बड़ा अपराधी है, उसको मंदिर में देखेंगे तो क्या कहेंगे आप। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल मंदिर में है तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, गुलाब ही कहेंगे ना, दूसरा कुछ तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मंदिर है और मंदिर के अंदर अगर कांटा रखा हुआ है तो क्या कहेंगे उसे, कांटा ही कहेंगे ना, भले है मंदिर में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि स्थान कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन यदि आपकी स्थिति क्या है उससे आप पहचाने जाएंगे। तो इसीलिए जब हम सुनते हैं मुरली तो हमारा ध्यान अपनी स्थिति पर हो, स्थिति बनाने पर, हमें ऐसे बनना है ना। हम कांटा ही रहे, हम सोचें हम तो कांटा हैं, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं तो भले मंदिर में जा रहे हैं, अच्छा काम है, और लोग कहेंगे कि हाँ ये मंदिर में है, लेकिन क्या कहेंगे, ये कांटा ही है। और आप गुलाब है और मंदिर में नहीं भी है, बाहर भी है, तो क्या कहेंगे, गुलाब है। लेकिन गुलाब की स्थिति भी, इसका भी स्थान से बदल जाता है। जैसे गुलाब का फूल है, अगर उसको रख दो मंदिर में तो उस गुलाब का अलग महत्व है, और वही गुलाब किसी डेड बॉडी पर रखा है तो महत्व बदल गया ना। है गुलाब ही, लेकिन उसका स्थान कहाँ है। तो स्थिति प्लस स्थान दोनों ही चाहिए। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को जीवन मुक्ति मिलती है। कोई आत्मा मान लो दो जन्म भी लेती है ना, तो एक जन्म किस में रहेगी, जीवन मुक्त कहेंगे। 10 जन्म कोई आत्मा लेती है तो 5 जन्म किस में रहेगी, जीवन मुक्त। लेकिन ये जीवन मुक्ति और सचिव की जीवन मुक्ति दोनों में कितना अंतर है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना कि स्थान प्लस स्थिति दोनों होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा ने क्या कहा इसलिए कि भले वो मंदिर में जाते हैं है ना, लेकिन उन्हें जो देवताओं के मंदिर में जाते हैं, जैसे गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो उनको सिख कहेंगे, लेकिन देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनको देवता नहीं कहेंगे है ना। मंदिर में बेशक गए, लेकिन देवता के मंदिर में गए, लेकिन वो देवता नहीं है। देवता बनने के लिए क्या करना है, एफर्ट करना है। तो इतना ध्यान जब रहेगा, इतना हम ध्यान देंगे है ना, कि स्थान प्लस स्थिति है ना। और बाबा ने क्या बताया कि क्या है, कौन सा युग है, कल्याणकारी युग। संगम युग जो है कल्याणकारी है, कैसे, एक यही समय है, यही युग है जब स्वयं भगवान सम्मुख है ना। स्वयं भगवान हमारे सभी संबंधी बन जाते हैं, माँ पिता भाई मित्र। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। और बाबा ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात क्या होती है जीवन में, आप कितना भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ है आपके लाइफ में, कोई कहे अगर कोई गाड़ी से चला जा रहा है, बहुत तेज से जा रहा है, 150 की स्पीड से, आप कहेंगे बहुत तेज जा रहा है, क्या स्पीड है इनकी है ना। लेकिन पता चले कि उसको जाना है बॉम्बे और वो जा रहा है दिल्ली की तरफ, तो क्या कहेंगे उसको, स्पीड आपकी कितनी भी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, दिशा। इसलिए कहते हैं ना, दिशा जो है हमारे दशा को तय करती है। स्पीड कितनी भी ज्यादा है लेकिन आप दिशा ही गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये इसलिए भी कल्याणकारी है क्योंकि स्वयं भगवान जो परमात्मा शिव हमें ये बताते हैं कि कैसे नर्क से स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसे नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो बाबा मत देते हैं ना, ये जो मत देते हैं, तो बाबा कहते हैं यही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। कोई सही मत आपको दे देना, अब सोचो कोई 30-35 साल से पुरुषार्थ किया हो, 2 बजे से उठा हो, उसकी मत कौन सी मिल गई, कहां ले गई उसकी मत। तो केवल पुरुषार्थ बड़ी चीज नहीं है, हमेशा हमें ध्यान रखना है हमारा डायरेक्शन कहाँ है। कई बार हमें फट करते हैं लेकिन इसमें ध्यान देना है कि कहीं इसमें मान शांत तो नहीं है, कहीं हम शो के लिए तो नहीं कर रहे। अगर शो के लिए कर रहे तो ठीक, तो इसलिए इतना ध्यान देना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे देखें कि बाबा के श्रीमत पर है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये मत मिलना नर्क से स्वर्ग में जाने का, बाबा कहते हैं ये पूरे कल्प में अभी ही मिलता है, अभी ही हम बाबा के साथ सभी संबंध निभाते हैं, इसी समय बाबा जो है बाप टीचर सदगुरु बनते हैं। तो इतना बड़ा, इतना भाग्यशाली युग तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता, समय नहीं हो सकता। पूरे 5000 साल में ये कुछ समय ही है जहां हम डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंध निभाते हैं। तो इसे केवल हम पॉइंट रिपीट ना करें, मुरली के पॉइंट याद कर लेने, इसे बैठ के इसको देखें। दिन में 2 बार भी करते हैं, 3 बार भी करते हैं तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आएगा कि कैसे कल्याणकारी युग है और बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बाबा को देखने के लिए हमारे पास फुर्सत है, हमारे पास टाइम है, बाबा हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। बाबा केवल हमारे लिए नहीं, हर एक आत्माओं के लिए। इसीलिए जब बाबा आते थे तो बाबा यही कई बार कहते थे कि बच्चे दुनिया की आत्माएं चिल्ला रही हैं, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा। तो बाबा हर एक के दिल के दुख दर्द को सुनता है, उसको ब्लेस भी करता है बाबा, जिससे हम सभी का भी देखे ना, हम लोगों को जितने पाप है उस हिसाब से हम लोगों को सजाएं बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बाबा की दुआएं चाहे हर एक आत्मा की, इसीलिए तो उसे भगवान कहते हैं, दाता कहते हैं, हर पल वो दे रहा है सहयोग अपने ब्लेसिंग की। कैसे भी आत्मा हो, हर एक आत्मा को सहयोग दे रहे हैं। तो ये बैठ करके हम बाबा के बारे में थोड़ा चिंतन करें, उसको फील करें, फिर देखो आप मजा आएगा। तब मुरली कहेंगे कि मुरली सुना, कल हमने मुरली सुन लिया है। और बाबा ने क्या बताया, जैसे सन्यास के लिए भी बाबा ने कहा कि आपका सन्यास कैसा है, बेहद का सन्यास है। दुनिया में भी सन्यास करते हैं लेकिन वो किसका सन्यास करते हैं, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने शहर का, उसको छोड़ देते हैं। फिर जाके रहते तो कहीं धरती पर ही है ना, जाकर के फिर किसी मंदिर में, किसी आश्रम में भी रहेंगे, वो भी तो गरीब जैसा हुआ ना। तो इसी दुनिया में छोड़ के इसी दुनिया में रहते हैं, ये उनका सन्यास है। लेकिन बाबा ने यहां क्या बताया, आपका सन्यास कैसे है, देह की दुनिया को ही छोड़ देना। जो देह की दुनिया है ना, जो ही हम आत्मा देखते हैं, जो ही हम भाई भाई समझते हैं, ये क्या हो गया, सन्यास हो गया। बेहद से बेहद का सन्यास यही हो गया ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए हम क्या करें, बेहद के सन्यास में हम क्या करते हैं, 4 बातें बाबा ने कहा। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा किसको याद करो, वर्षा को याद करो। बाबा को याद करो, वर्षा को याद करो, और क्या रहो, बाबा ने कहा पवित्र रहो, और क्या रखो, परहेज रखो। ये चार बातें है ना। तो बेहद का संन्यास अर्थात बाबा को याद करें, वर्षा को याद करें, पवित्र रहें और परहेज रखें। परहेज किससे रखें, जो भी हमें विकारी दुनिया की तरफ, इस देह की दुनिया की तरफ ले जाने वाली बातें हैं, उनसे हम परहेज रखें। तो जब भी हम कोई बात सुनते हैं या देखते हैं तो हमें तुरंत निर्णय करना है कि ये कहां ले जाने वाली बात है। अगर ठीक नहीं तो इसे क्या करें, परहेज रखें, इससे दूर हो जाए। ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा नुकसान होने वाला भी हो तो भी कहें कि चलो रख लो, नहीं। इससे नुकसान होने वाली चीज है, अलग किया, परहेज है ना। तो इसीलिए बेहद का संन्यास ये भी हमें बैठ करके देखना है, फील करना है कि हमने बेहद का संन्यास किया है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े देर के लिए हमने कर दिया संन्यास, हमने पॉइंट का चिंतन कर लिया, हाँ? थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, हो गया, नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें, है ना। और बाबा ने क्या बताया कि ये कैसा युग है, हाँ? संगम युग है ना? तो संगम युग के महत्व को हमें समझना है, है ना? तो संगम युग के महत्व को जान करके क्या करना है, श्रेष्ठ पालप, है ना। संगम युग के महत्व को जानकर यदि हम श्रेष्ठ पालप बनाते हैं तो यही क्या है, तीव्र पुरुषार्थ। तो इसी को कहा कि संगम युग के महत्व को जानकर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो तीव्र पुरुषार्थी की भी कई डेफिनेशन भी होती है ना। बाबा क्या कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सोचा और किया, सोचने और करने में जितना अंतर हो गया ना, यही हमारे पुरुषार्थ में कमी हो गई। तुरंत किया, सोचा और किया, ये तीव्र पुरुषार्थ है। और हमने सोचा है और फिर सोचा कि बाद में अभी कल से करेंगे या शाम से करेंगे, ये क्या हो गया, पुरुषार्थ से भी नीचे ले गया, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि ये क्या है, संगम युग छोटा सा युग है, है ना। और बाबा ने कहा कि ये समय भी छोटा है, ये हमारा जीवन भी है ना। जीवन संग जो संगम युग है ये भी कैसा है, हीरे तुल्य। और हमारा ये जीवन भी कैसा है, हीरे तुल्य। तो यदि इसे हम गंवाते हैं, हीरे तुल्य कोई चीज है तो कितना बचा के रखना चाहिए, है ना। थोड़ी भी अगर हम लापरवाही करते इसमें तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए हम इतना इस के महत्व को समझे, इसीलिए बाबा ने कहा यदि हम इसके महत्व को भी समझते हैं ना कि संगम युग क्या है, इसका क्या महत्व है, तो बाबा ने कहा आप स्वतः तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है और सब लोग कल्चरल प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, और आपको अभी पता चला कि एक घंटे में ट्रेन जाने वाली है आबू रोड से, तो लोग कहेंगे 15-20 मिनट देख लो फिर चले जाना आप, वो क्या कहेगा, नहीं नहीं हम तो जा रहे थे, उसका यहाँ दिल लगेगा क्यों, हाँ? वो महत्वपूर्ण, उसने महत्व को समझ लिया ना कि यदि हम यहाँ देखेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये है महत्व को समझना क्या भैया। तो यदि अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, संगम युग पर हमने ध्यान नहीं दिया इस समय, तो क्या होगा, हमेशा के लिए हमारी जो प्रारब्ध है उससे हाथ धो बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा किसके महत्व को भी समझना। तो इसके महत्व को कैसे समझेंगे, जब हम बैठ करके और इसके बारे में चिंतन करेंगे कि बाबा ने क्या बताया संगम योग के बारे में, इसका क्या महत्व है ना। तो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। और बाबा ने क्या बताया लास्ट में, कि सर्व को स्नेह और सहयोग देना, यही क्या है, विश्व सेवादारी बनना है। कोई भी हो, कैसी भी आत्मा हो, हर एक आत्मा को सहयोग देना है, हर एक आत्मा को स्नेह देना है ना। तो ये विश्व सेवाधारी बनना है। और ऐसे तो हम मेहनत करते हैं ना बाबा को याद करने के लिए, क्योंकि बाबा की याद रहती है, कभी भूल जाती है। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो अनेकों को सुख देते हैं उनको मैं याद करता हूं। इसीलिए आप देखेंगे, आप किसी का भला करो, किसी को मदद करो, किसी को सहयोग करो, तो ऑटोमेटिक ना आपको ऐसा लगेगा जैसे बाबा की खींच हो रही है, आपको स्वतः लगेगा खींच हो रही है। तो इसीलिए यदि किसी का योग नहीं भी लगता है ना, तो आप क्या करो, अनेकों को सुख, अनेकों को मदद, है ना। तो जितना आप अनेकों को सुख देंगे, जितना मदद करेंगे, तो ये दुआएं आपसे बाबा से और जोड़ देंगी। तो केवल ये नहीं करना कि हमको बस योग नहीं लग रहा है लेकिन हम जबरदस्ती कर रहे हैं, उससे नहीं लगेगा योग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अनेकों को सुख दो, है ना। इसीलिए गीत भी है ना कि शिव बाबा को लगते प्यारे कौन, जो अनेकों को सुख देते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज के मुरली से, जो इसमें बाबा ने कहा ना, जो तो इनका जो है, जो कहेंगे द्वापर से, द्वापर से जो भी है, तो इनका तो विकारों से, जो यहाँ क्या है, जो भी चीजें बनती है, जो भी शरीर बनता है, तो यहाँ सभी तत्व कैसे हैं, तमो प्रधान है ना, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही तमो प्रधान हो जाते हैं ना शरीर। लेकिन ये तो सतयुग में ही केवल ऐसा तत्व है जो सतो प्रधान है, इसलिए वहां बनने वाला शरीर भी स्वतः सतो प्रधान होता है। ठीक, ओके, ओम शांति।